Shanti. Good morning. Warm welcome to all our present here. आप सभी का दिवाली धर्म संस्कार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं. जैसे आप सभी को पता ही होगा, दिवाली धर्म संस्कार के हमारे तीन मुख्य उद्देश्य हैं. एक तो हम चाहते हैं कि हरेक गर्भवती माता फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होनी चाहिए. तभी जाके हमारा जो आने वाला बच्चा है वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होगा. और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हर एक गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं काफी सारे डिलीवरी सिजेरियन से होते रही है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना? तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो हमें फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. तो फिजिकल प्रिपरेशन में क्या क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज होना चाहिए, डाइट भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए. और खास करके दिवाली गर्भ संस्कार में हम तीन इंपॉर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स रखते हैं. एक है सात्विक डाइट, सात्विक वेजिटेरियन डाइट, है ना, वेजिटेरियन डाइट. लेकिन जो हम लोग बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, है ना, सकारात्मकता के साथ बनाए, खाए और परोसे, है ना, प्रिपेयर भी करना है, खाना भी है और सर्व भी करना है पॉजिटिव माइंड के साथ. और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. और तीसरा है मेडिटेशन, है ना, जिससे हमारे मन को शांत कैसे रखे, खुश कैसे रखे, ये देखते हैं. आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो खास करके योगा के ऊपर है. और योगा सिर्फ दोनों के लिए होता है, बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी. तो जिससे बॉडी भी हमारी प्रिपेयर करेंगे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और इससे मन भी बहुत हमारा शांत हो जाता है. मन शांत है तो मन तंदुरुस्त रहता है. और जैसे कहा जाता है मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, और माँ तंदुरुस्त रहेगी तो आने वाला बच्चा भी बहुत तंदुरुस्त रहेगा. तो आज हम देखेंगे खास करके कि ओंकार कैसे करना है, फिर ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, श्वसन के व्यायाम कैसे करने हैं, जिससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है. क्योंकि आप जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो क्या होता है, पेट बढ़ता जाता है तो लंग कॉम्प्रेस होते हैं, फिर हमारा जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी प्रेगनेंसी में बढ़ता है, क्योंकि माँ के लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए. लेकिन लंग कॉम्प्रेस होने की वजह से अवेलेबिलिटी कम रहती है. तो यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी सीखना है, डीप ब्रीथिंग, है ना, क्योंकि डिलीवरी के समय आपको सांस रोक के रखना होता है और फिर नीचे जोर करना होता है. तो हमेशा तो हम ये करते नहीं है, फिर डिफिकल्टी होती है. तो इसलिए यहाँ पे कैसे वो भी करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये भी देखेंगे. फिर आपको कुछ प्रेयर्स भी सिखाए जाएंगे, गायत्री मंत्र और किस तरह सिखाएंगे, तो जिससे हमारा मन भी और शांत होता है. तो अभी हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे. सर जो है बहुत एक्सपर्ट है इस योगा क्लासेस में. कल से सर का 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है. और सर से मैं एक बार बात कर रही हूँ तो सर ने कहा कि लास्ट 45 ईयर्स में एक भी बार क्लोजिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं इसका मतलब कि योगा करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ, जिसका हम संपूर्ण हेल्थ कहते हैं कि पूरा हेल्दी, तो वो कैसे रह सकते हैं, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है. और मैडम उनके साथ आए हैं, वो बहुत प्यार से उनको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे. आप सभी को बहुत बहुत दिवाली गर्भ संस्कार की तरफ से शुभकामनाएं, और आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन भी कि आप सभी, है ना, माता बनने वाले हो. तो ये बहुत प्यार से एक्सरसाइज सीखना ताकि आप सभी की डिलीवरी भी नॉर्मल हो, आप भी हेल्दी रहे और आने वाला हमारा बच्चा भी हेल्दी. कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हम आपको हमेशा एक सोनोग्राफी करने के लिए कहते हैं. थर्ड मंथ के एंड में आपका एक सोनोग्राफी होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो प्लासेंटा वहां कहाँ पे है, किसी गर्भवती महिला की वहां नीचे है तो उनके केस में हम उनको एक्सरसाइज मना करते हैं. और फिर किसी को पहले अबॉर्शन है या इस प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हुआ है, ऐसे कुछ है, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर ही आपको एक्सरसाइज करने हैं. दूसरी बात की जो प्राणायाम है, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और उनका प्रेयर प्रार्थना, इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मतलब किसी को मना नहीं है, तो हर कोई वो कर सकता है. तो रूटीन फर्स्ट मंथ या फर्स्ट मंथ जैसे ही पता चलेगा, ये सब हम एक्सरसाइज छोड़ के प्रेयर्स जो है, ओंकार है, प्राणायाम है, जरूर कर सकते हैं. लेकिन एक्सरसाइज बॉडी के जो है वो हम 3 मंथ के बाद फोर्थ मंथ ऑनवर्ड हमें चालू करते हैं.
सभी बहनों को ये साल कुछ महीनों के बाद आप माँ बनने वाले हैं और माँ ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी बढ़कर है, इसे ध्यान में रखो। सिर्फ वो ही अपने बच्चे को संस्कार दिला सकती है और बना भी सकती है, जिस वजह से हमारा देश, हमारा राष्ट्र वो भी प्रगति के ओर चलने वाला है। अब कुछ बातें ऐसी है, इस अवस्था में हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। ये तो आप सभी मानते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, यानी जो लाइफस्टाइल आज की है, वो विज्ञान के वजह से या किसी और कारण के वजह से बहुत बदली हो चुकी है। तो इसके लिए खास आपको समय नहीं निकालना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह आप खुलने के बाद रात को सोने तक बीच बीच में आपको ये सब चीजें करने के लिए मैं कहने वाला हूं। सबसे पहले हमारी शुरुआत सुबह से जो होगी वो नींद से उठते समय हमारी आंख अगर खुल गई तो आंख खोलने के बाद फौरन नहीं उठना। तो नींद से उठते समय हमारी स्थिति कैसी रहेगी, कैसे हम उठे, ये पहले हम देख लेते हैं। रात भर की नींद हमारी इस तरह रहती है, यानी पीठ के बल हम सोते हैं। 6-7 घंटे या 8 घंटे की जो भी नींद है, उस नींद में होता है क्या, हमारे पूरे शरीर का खून पीठ के बल यानी पीठ की साइड में चला आता है और वहां उनका अभिसरण यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। लेकिन हम लोग अगर एकदम उठ के बैठे तो अचानक उठने के वजह से शरीर में खून का संचलन फास्ट हो जाता है और कभी कभी कमर, पेट या गर्दन में मोच आती है। ये मोच टालने के लिए हमें उठते समय ये सावधानता लेनी है कि सबसे पहले आंख खोले, गर्दन सीधी रखे, हाथ और पैरों को हिलाए और एक करवट बदलकर हाथों का आधार लेकर उठ के बैठे। 2-4 सेकंड की बात है, उठ के बैठने के बाद फौरन हम लोग जगह नहीं छोड़ेंगे, हमारे पूरे शरीर को राइट एंगल में रखकर कर्ण दर्शन करेंगे, यानी दोनों हाथों का दर्शन लेंगे और मन में केवल ये संकल्प करें कि आज रात तक, सोने तक मेरे इन हाथों से कोई भी गलत काम न हो, इतना संकल्प करके हम लोग जगह छोड़ देंगे। ये उसके बाद दोनों हाथों का दर्शन करके चेहरे के ऊपर से हाथ मारो और बिस्तर से बाहर उठो। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम चले जाते हैं। बाथरूम के बाद नेत्र स्नान की क्रिया बताई गई है, ब्रश होने के बाद में ये हम लोग कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना है, तो हमारे घर का जो बहता हुआ पानी है उसे एक गिलास में पकड़ लेना है या स्टोर किया हुआ पानी, गर्म वर्म नहीं करना है। अब ये पानी हमें मुंह में लेना है, मुंह में लेकर दोनों गाल को फुला देना है और दूसरे हाथ से पानी का अंश यहां लेकर दोनों आंखों के ऊपर छिड़कने हैं। इसे नेत्र स्नान कहा जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि पूरे दिन में जो आंखों के ऊपर तनाव रहता है और आंखों में जो गर्मी रहती है, ये केवल पानी के फटके से नॉर्मल में आ जाती है। इसके अलावा लिथार्जी जिसको कहते हैं, अगस्त से सुबह ज्यादा ठंड है, हवा ठंडी चुकी है, सो जाएंगे आधा घंटा, ये जो मामला है ये दूर होता है और हमारी दृष्टि सतेज हो जाती है। ये नेत्र स्नान की क्रिया दिन में कम से कम 3 बार करें, सुबह उठने के बाद, दोपहर को कहीं आप लोग बाजार गए तो घर लौटने के बाद, और रात को सोने के पहले। सोने के पहले अगर करेंगे तो रात की नींद अच्छी तरह से शांति से लगने वाली, ये ध्यान में रखें। अभी उसके बाद में स्नान वगैरह आपका हो गया, दूध वगैरह जो भी आपको द्रव पदार्थ है वो लेना जरूरी है, याद रखो। पेट साफ होने के बाद, साफ आपका स्नान होने के बाद में इस तरह वज्रासन में बैठने की कोशिश करनी है बस। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठने की कोशिश करें, इस तरह पसंद है ना, क्या जाना। नेत्र स्नान के बारे में, पानी के फटके लगाने के बाद जो मुंह में पानी है फेंक देना, उसको वापस रिपीट करके फिर फटके लगाना। ये मैंने भूल गए या भूल की बताया नहीं,
तो पानी पिया थे उसमें
इसे वज्रासन कहते हैं।
नव्या
महिन्यात पण बसायला लागते। ये वो आसन है कि हम लोग खाने के बाद भी कर सकते हैं, बल्कि अगर खाने के बाद करेंगे तो शरीर का जो अधिकतम खून है जो पोटलियों में जमा है वो ऊपर की तरफ आता है, और हमारे पेट का जो हिस्सा है जिसे पेटों का स्थान पोटी पोटा का जो भाग है वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाया जाता है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है नॉर्मल व्यक्ति को भी और गर्भवती महिला को। इसलिए इसमें बैठना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। मैं कहूंगा मेरे बाद आप कैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो
महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मनो तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ सहनावतु
ॐ सहनावतु
सहनौ भुनक्तु
सहनौ भुनक्तु
सवीर्यं कर्वावहै
सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषान्वहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
उसके बाद दोनों हाथों का दर्शन करें, चेहरे पर से हाथ घुमा लें और इसी तरफ बैठने की कोशिश करें, दोनों हाथ इस तरह रहेंगे, गर्दन सीधी और हमारी आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद कर दो। अब अपना पूरा ध्यान नासिका से जो प्रश्वास निकलते हैं और श्वास लिए जाते हैं वहां पर रहेगा। इसका मतलब नासिका के अगले वाले हिस्से पर हमारा पूरा लक्ष्य केंद्रित होगा। कम से कम 3 मिनट तक इसी अवस्था में बैठकर श्वास प्रश्वास को जानने की कोशिश करें। वायु गति से चलने वाले हमारे श्वास प्रश्वास इस स्थिति में बैठकर जब उसकी अनुभूति लेने का समय आता है तब 1 मिनट में चलने वाले 18 श्वास प्रश्वास की जगह केवल 7 या 8 श्वास प्रश्वास चलते हैं और नेचुरली डीप ब्रीदिंग होता है, जिसकी केवल इसी अवस्था में नहीं जब तक हमारे सांस प्रश्वास चालू रहते हैं यानी अंतिम सांस तक उसकी जरूरत रहती है। बिखरे हुए विचार इकट्ठा आते हैं, वायु गति कम होने की वजह से मन शांत होता है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति पर आता है। मन ही मन में कुल देवता का स्मरण और अपने माता पिता का स्मरण जारी रखें। इस क्रिया का नाम प्राणाकर्षण क्रिया ऐसी है, चित्त को आकर्षित करने वाली, श्वसन की गति कम करने वाली और निसर्गतः नेचुरली डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन करने वाली। कम से कम 3 मिनट स्थिति में बैठने की कोशिश करें, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान लग जाता है, उस समय 3 मिनट से ज्यादा भी हम लोग बैठ सकते हैं। इसके बाहर आते समय हमारी दोनों आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। छोड़ना है छोड़ना है छोड़, उसी के वजह से इन पैरों में चींटियां आई। अब चींटियां आई है इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो हिस्सा है तलवों का, वहां का ब्लड सप्लाई कम हो गया और ये ब्लड शरीर के बाहर तो नहीं आया, फिर गया कहां, तो ऊपर के ट्रांसफर हो गया। इसलिए न्याहारी खाना और डिनर के बाद वज्रासन में बैठने की आदत ना,
मुझे 3 मिनट बस
रोज से वज्रासन में इसलिए बैठना है कि ये खून का सप्लाई तो ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन खाया हुआ भोजन या अन्न आम आदमी से दूसरे आदमी से जो वज्रासन में बैठते हैं उनका जल्दी हजम होता है। यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि उसको ब्लड का सप्लाई चला ज्यादा मिल गया। इसलिए ये आसन डालकर खाना खाने के बाद भले आप टीवी देखते बैठे, फिर कितना समय बैठेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और उसका लाभ हम उठा सकते हैं। कड़ा बताइए हाँ। लेकिन ये जो प्राणादर्शन क्रिया जो अभी हमने की श्वास की गति, उसके लिए आपको कम से कम 3 मिनट तो बैठना ही बैठना है। ये भी सुबह स्नान के बाद, बाहर से घर लौटने के बाद और रात को सोने के पहले, इस स्थिति में अगर करते जाएंगे तो हमारे सांस प्रश्वास बचाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति की आयु श्वास प्रश्वास में है, जितने बचाएंगे उतनी दीर्घायु की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ये ध्यान में रखें। अभी जरा पैरों के प्रकार कर दो, जो चीटी आई है उसे निकालने के लिए दोनों पैर आगे फिर पीछे, फिर उसे रोटेट करना है। दोनों तरफ से अभी एक पैर को उठाकर इस तरह रखना है। दूसरे हाथों से जो घुटना है उसे जरा नीचे प्रेस करो और छोड़ दो, जितना पॉसिबल है उतना। उसका और गर्भ का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके क्या लाभ हो सकते हैं बाद में बताओ। सेम ट्रीटमेंट दूसरे पैर को देना है। उसके बाद में बटर फ्लाई, यस उलट, ये जास्ता फायदेशी रास्ता है। बस ऐसे ही चालू करो। मीडियम मीडियम फास्ट करायचं नाही, कारण सवय नसल्यामुळे गुडघे दुखते। की हे ईश्वरी मान्य असलेलं आसन आहे, ये भगवान का माना हुआ आसन आहे। ये कैसे प्रूव करें, तो हर छोटा बच्चा जो पहले बैठने सीखता है बगैर कोई सिखाए इस स्थिति में बैठता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो याद करो। अब इसमें बैठकर ब्रह्म मुद्रा नाम की गर्दन के प्रकार है, जो प्रकार थायराइड को कंट्रोल करता है, तो इसे देख लेते हैं। यहां देखिए, पहले प्रकार में गर्दन को अंदर सिकुड़ लेना है और बाएं तरफ जाकर पीछे देखने की कोशिश करनी है, वहां थोड़ा सा पॉज लेकर फिर दाहिनी तरफ आ जाना है, बीच में कहीं भी नहीं रुकें, दाहिने तरफ देखने की कोशिश, बाया दाहिना दाहिना बाया, ये सिलसिला एक 8-10 बार जारी रखें। अभी दूसरे प्रकार में आंखें देखो कैसे घुमाया जाता है, उस तरह घुमाने की कोशिश, पूरा शरीर सख्त रहेगा, गर्दन ढीली रहेगी। एक तरफ से 7-8 बार, फिर दूसरी तरफ से चलिए आहिस्ता के खोल दें। अब कंधों के प्रकार दोनों हाथ पकड़कर हमारे कंधे रोटेट करें, गर्दन सीधी है, दूसरे
दूसरे तरफ से। अब दूसरा प्रकार हाथा, हाथों का प्रकार इस तरह, दोनों हाथ रखो, दोनों कोहनियां एक दूसरे से जोड़ दो और पूरा सर्कल ले लो। जो आवाज आती है उसे डरो नहीं, दूसरे बाजू से आगे आने के बाद आपके सुनते बस अभी छोड़ दो वज्रासन। सफाई जरा तुम्ही आओ वर्किंग होना संध्याकाळी करा, इव्हन ऑफिसमध्ये पण तुम्हाला जर वेळ असेल करायला हरकत नाही, पण याच्याने खूप फायदा होतो। एकतर आपले छातीचे म्हणजे पीठ के मसल और सीने के मसल ऊपर नीचे होने की वजह से अंदर वाले ऑर्गन्स को चालना मिलती है। दुग्ध ग्रंथि जो आगे चलकर उसका इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है उसमें भी हल्का सा एक्सरसाइज उसमें दिया जाता है। तो ये हमें बैठे बैठे करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिन में कितनी भी बार करो इसके लिए पेट खाली होने की भी जरूरत नहीं। अभी कोशिश करें सुखासन में बैठे या पद्मासन में, जो भी आप डाल पाते हैं, लेकिन आप नहीं लगा पाते तो जोर जबरदस्ती मत करो। अभी जैसे डॉक्टर ने बताया और फिजिकली भी वो सही है कि जब जैसे गर्भ बढ़ता है वैसे ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और हमारे लंग्स को प्रेशराइज करता है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डीप ब्रीदिंग जरूर कहा जाता है। लेकिन डीप ब्रीदिंग ये एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान में रखो। और कितना ध्यान रखेंगे आप डीप ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कपालभाति नाम की एक क्रिया है, उसके नाम आपने सुना होगा, वो आप लोगों को अलग तरीके से करना है। जो बताई गई है टीवी पर वो नहीं करना है, उससे हो सकता है तकलीफ हो। लेकिन हमारी कपालभाति, मैं केवल हाथ यहां पर रख के दिखाता हूं, सूक्ष्म रूप से होगी, यानी वहां जो बताई गई है वो अलग है, हाँ वो नहीं करना है। इस तरह करनी है। इस तरह करने के बाद क्या होता है, हमारे जो दो लंग्स हैं उसे इस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है। और ये कितना करना है तो अपनी क्षमता के अनुसार 30-40 स्ट्रोक, एक सेकंड में दो स्ट्रोक होते हैं, 30-40 स्ट्रोक होने के बाद में एक्सेलिंग करके यानी श्वास छोड़कर रुक जाना, वो बिना श्वास का रुकना है, याद रखो, यानी इसके बीच में श्वास नहीं भरना है। कितना सेकंड अपने क्षमता के अनुसार, उसके बाद में जब आपको मैं कहूंगा यहां पर कि अभी श्वास भरो, तब दोनों नासिका से पूरे दोनों लंग्स फुल कर लेना है। अब ये फुल हुए ऊपर सांस भरने के बाद में एक 2-3 सेकंड का पॉज, यानी भरने के बाद 2-3 सेकंड ऊपर रुक जाना है। उसके बाद में जो अंदर गर्म श्वास है उसे इस तरह आहिस्ता 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 बाहर छोड़ना, एकदम छोड़ना नहीं है। इसमें क्या होता है, लंग्स को एक्सरसाइज इससे मिले। जब आपको कहा जाता है श्वास छोड़ कर रुको तब ये कोलैप्स हो गए, और अभी कहा जाता है कि पूरे भरो तब ये पूरे एक्सपांड हो गए, तो कोलैप्स होना और एक्सपांड होना, इसका बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से को फुलफिल किया जाता है। और ये फुलफिलनेस अच्छी तरह से रहे इसके लिए उसके बाद में आपको ये कहा जाता है कि आस्ते आस्ते भाग छोड़ो, तब जाके ये आहिस्ता आहिस्ता भाग छोड़ा जाता है। भाग छोड़ने के बाद फिर आपको ऐसे लगता है कि अभी नॉर्मल ब्रीदिंग है, फिर अपना ब्रीदिंग चालू करो। इसके 3 आवर तक, यानी अगर 30 के स्ट्रोक है तो 90, अगर 50 के है तो 2, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते ये स्ट्रोक बढ़ने वाले हैं। इस तरह हाथ रखो, श्वास पहला छोड़ दो, आधा भरो, हल्का चालू करो, मुंह बंद रहेगा तो बंद रहेगा। आंखें हमारी बंद रहेंगी, हमारा पूरा ध्यान हमारे लंग्स के ऊपर रहेगा, उसका हल्का हल्का ओपन क्लोज होना हम फील कर सकते हैं। इस तरह के बस अभी श्वास छोड़कर रुक जाओ, भरो नहीं श्वास। अभी भरो, दोनों नासिका से पूरी लंग्स भर लो। भरने के बाद 2 सेकंड का पॉज ले लो और धीमे 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 बाहर छोड़ो। स्लोली आए, स्लोली स्लोली स्लोली। अब नॉर्मल ब्रीदिंग, 2-4 श्वास प्रश्वास होने दो, उसके बाद में वापस इसे रिपीट करेंगे। ऑक्सीजन इंटेक बढ़ने के लिए हमारी लंग्स फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ना आवश्यक है। छोड़े श्वास, आधा भरो, चलने दो हल्का, एकदम हल्की कपाल हटी। पहले
बाद आधा घंटा यानी ढाई घंटे का सुबह का समय और सूरज डूबने के पहले आधा घंटा और डूबने के बाद आधा घंटा ये एक घंटे का शाम का समय होता है। अब यही आदर्श क्यों है कि उसी समय सूरज की किरणें पैरेलल रूप में हमारे शरीर पर आती है। सरल प्रश्न देता लेकिन इस समय हमारे पास समय नहीं है तो किसी भी समय ये गायत्री का जब हम कर सकते हैं ये बात आप ध्यान में रखें। उससे हमारे पेट में जो अच्छी तरह से एक्टिवेशन मिलता है और आप ये अनुभव जरूर लेंगे कि उसके पहले इसके बाद ये मंत्र जब आप बाहर करेगी तो भी वो सुनते रहेगा और इसकी विशेषता ये है कि जो हमारे मुंह से निकलेगा वो अंदर सुनता है। ये कथा आपकी महाभारत की आपको मालूम होगी। अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में चक्रव्य वेदन का शास्त्र ज्ञान लिया था। उसी तरह जो माँ करती है वो अंदर वाला बच्चा भी करता है। इसे सोचकर ये सूरज का जो मंत्र गायत्री मंत्र बताया गया है वो करना है। वो इस तरह करना है, मंत्र आपको शायद मालूम होगा लेकिन हमें वैखरी में करना है। इसे तीन स्तर में किया जाता है, वैखरी, उपांशु और मानस। यानी खुली आवाज में जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसे वैखरी कहते हैं। उपांशु में ओटो की हलचल होगी, मेरा मंत्र मुझे सुनाई देगा, इतनी बड़ी आवाज होगी। और तीसरा है मानस, यानी मन ही मन में इस मंत्र का उच्चार हमें शुरू रखना है। तो मैं पहले बताता हूं उसके पीछे आप बोलते चले। एक कृति के लिए यानी एक वाक्यता के लिए मैं पहले कहूंगा, मेरे बाद इमीजिएट आप बोलना चालू करो। ओम भूर्भुवस्व सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
धियो यो नः प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवस्वः
ॐ भूर्भुवस्वः
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्
धियो यो नः प्रचोदयात् दिया जाता है।
उसी के प्रभाव पर पूरे शरीर का कारोबार चलता है। तीन देवता है और ऊपर जो अर्धचंद्राकृति गंधार है वो मिलकर 3.5 मात्रा का ये ओंकार है। अब ये तीन प्रमुख देवता हमारे धर्म में बताए गए, धर्म में नहीं बल्कि सभी जगह बताए गए। ये तीन देवता कौन है? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बाकी उनके सब अवतार, लेकिन ये तीन प्रमुख है। ये तीनों प्रमुख देवता हमारे शरीर में निवास को है। अब ये कैसे? तो ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि को निर्माण करना, ये ब्रह्मा का कार्य है। विष्णु का कार्य जो निर्माण हुई सृष्टि है उसका भरण पोषण ये विष्णु करता है। और हृदय क्रिया बंद होने के बाद आदमी की मौत होती है, ये काम भगवान शंकर का है। इसलिए मृत्यु देवता शंकर को कहते हैं। और ये तीनों देवता कृति स्वरूप अपना अपने शरीर में वास करती है। तो ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि का निर्माण। सृष्टि के निर्माण के लिए यानी वंशारोपण के लिए जो भी ऑर्गन्स है वो सब नाभि के नीचे है। रजत ग्रंथि, वीर्य ग्रंथि, गर्भाशय, ये पूरे नाभि के इस भाग में बिखरे हुए हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मा का स्थान माना गया है। ऊपर वाला जो हिस्सा है भोजन करने के बाद जो यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर उसका डाइजेस्ट होकर वहां से जो रस निकलता है उससे ब्लड निकलता है, ब्लड बनता है, ये काम बीच वाला हिस्सा ये विष्णु का है। और ये हृदय का स्थान ये भगवान शंकर का है। अब तीनों देवता का एकत्रित पूजन ओंकार के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ये ओंकार घर घर में होना चाहिए। वो किसी धर्म का या जाति का या पंथ का नहीं है, एक आम ऐसे यह ओंकार की मात्रा है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों में से हर सजीव को जाना पड़ता है। यानी जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु,
ये तीन अवस्था है। लेकिन ये अगर हम ओंकार करते रहे तो अंदर वाले जो छोटे खास करके हृदय और ब्रेन हमारे जो है उसमें ज्यादा एक्टिवेशन ओंकार के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए भगवान ने दिल और दिमाग के बिल्कुल बराबर बीच में कंठ दिया है, ये कहीं और नहीं है। यहां से निकलने वाले वाइब्रेशन खास करके जो पिंजरे में हमारे बर्ड ऑर्गन्स है और ये जो कोटी है उसके अंदर जो ब्रेन है उसको सप्लाई होता है तो उनका कार्य भी सुधरता है और गायत्री ओंकार में विलीन होती है। तो ये ओंकार कैसे किया जाता है, श्वास पहले भर लेंगे हम लोग पूरा, भरने के बाद ओ 40% और मुका ये 60% हो, इस हिसाब से मकार को दीर्घ रूप में करना है। जितना दीर्घ मकार हम लोग करेंगे उतना हमें अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ओकार के द्वारा बाह्य वातावरण शुद्धि होती है जिसे हम लोग औरा कह सकते हैं और मकार के द्वारा अंतकरण शुद्धि होती है। मकार ये मुंह बंद किए बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये याद रखो। इसलिए ये मकार जितना लंबा करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा लाभ होगा। तो चलो बैठो।
तो आदि अपन श्वास खेतो ना, मतलब वो बोलता ना अपन श्वास बाहर तेरे लक्ष्य में कर
होना नहीं, ओकार में ज्यादा हवा बाहर नहीं और मनोज तो ओकार 40% करेगा और मकार जास्त करेगा। हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द एक्सेलिंग से पैदा होता है, प्रश्वास हतुन उच्छ्वास हतुन शब्दाची निर्मित होती है, थोड़ा लक्षण किया। त्यामुळे तो श्वास तुम्हाला आतमध्ये थोडा असा रोखून ठेवावा लागेल मकार करता, मग तो मकार दिली होता। डोळे बंद करा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आपके आंखें बंद रहेंगी। श्वास छोड़ दीजिए, शुरू कीजिए। बंद कीजिए, हाँ जाने दो जाने दो जाने दो। भरो श्वास, शुरू कीजिए। यह सोचते हुए हमारा आंतरिक लक्ष्य सीने के मध्य पर ले चलो। अंगूठे के आकार की एक जोत हमारे सीने के मध्य भाग पर जल रही है, जिसे प्राण ज्योत के नाम से पहचाना जाता है। इसी ज्योति के प्रकाश में ईश्वर रूपी आत्मा राम का दर्शन लेने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकाश में अपने आप को विलीन कर दीजिए। केवल अंगुष्ट मात्र ज्योति स्वरूप प्रकाश। फिर से दो बार उठा होगा, सावधान श्वास को छोड़ो, भर लीजिए श्वास पूरा, शुरू कीजिए। पुराने कपड़े डालो जो ये एंगल मेंटेन करे। जब भी आप वहां पर आराम करने के लिए जाएंगे इस बिस्तर के ऊपर, तो इस एंगल करेगी, कुठल्या ही करेची औषधाची गरज नाही। फक्त तुम्ही रात्री झोपताना थोडे पाय एंगल वर राहतील 10-15 डिग्री, याची काळजी घ्या। उसके बाद यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। इसके लिए एक ही बात मैं बता देता हूं, नहाते समय बड़ा टब ले लो, उसमें गर्म पानी
और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालो, वो नीला हो जाएगा। उसमें बैठकर अश्विनी मुद्रा करें, अश्विनी मुद्रा यानी रुद्रद्वार को ऊपर खींचे छोड़ दे, ऊपर खींचे छोड़ दे। पोटेशियम परमैंगनेट वो हिस्सा निर्जंत करेगा और गर्म पानी उसमें मुलायम तलाएगी, यानी वहां का खून का संचालन अच्छे से होगा। इस वजह से एक ही समय मलमूत्र विसर्जन मार्ग क्लीन किए जाते हैं। वहां डेटॉल वगैरह लगाने की परमिशन नहीं है, यानी जलन होगी, बहुत नाजुक हिस्सा रहता है। हमारे शरीर के ये जो नीचे वाले दो दरवाजे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और नाजुक भी है, इसलिए उस टब में इस तरह करते रहें। टब बड़ा लो ताकि आप भारी बैठ सके, जब तक आप यानी जिस महीने तक आप बैठ सकते हैं तब तक बैठेगा। उसके बाद टब का पानी फेंक कर स्नान करके बाहर आना है, बाहर वाले को कुछ पता नहीं लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट मेडिकल में मिलता है, इतना सा डालेंगे तो पूरा पानी नीला होता है, उस इलाके को निर्जंत किया जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ फिजिकली तो गायनेक जहां पर आपका नाम दर्ज है उससे कंसल्ट करो, क्योंकि दूसरे डॉक्टर को हो सकता है आपका कंडीशन या पोजीशन मालूम नहीं है। हाई डोसेज कभी दिए गए तो उसका गलत परिणाम बच्चे पर हो सकता है। शक्य तो सर्दी खोखला ऐसे गर्भवती उपचार करें, ये सभी बेस्ट। गर्भवती उपचार म्हणजे स्टीम, खोखला असेल तर सीतोपालादी चूर्ण म्हणून आयुर्वेदिक मिळतं, ते एक चमचा चूर्ण एक चमचा मधामध्ये घालून चाटत घ्यायचं आणि बाहेर का सब खाना बंद करून, फाइव स्टार हॉटेल होने दो फिर भी बात बस छोड़ लो अभी, सेम दूसरे पर। आपले इथे जे बिन हाडाचे सगळे ऑर्गन्स आहेत त्यांना प्रेस केलं जातं आणि गर्भाशयाला मोकळी जागा मिळते ना त्या हातात, हळू हळू फक्त दा हा मुलगा मुलगा हा हळू दा बस सोडून द्यायचं। हे फक्त काय म्हणजे इथे जे आपल्या गर्भाशयाची पिशवी आहे त्या पिशवीला इथं दाम दिला ही पिशवीकडे जाते, इकडे गेले की इथले जे ऑर्गन्स आहेत हे ऑर्गन्स आतमध्ये आतल्या बाजूला असे शिफ्ट होतात आणि ही पिशवी तिथं सरकते, त्याच्यानंतर इथून ज्या वेळेला दाबतात त्यावेळेला तिथल्या ऑर्गन्सना प्रेशराइज केलं जातं आणि ही पिशवी थोडी या बाजूला शिफ्ट होते। होतं काय, दोन्ही बाजूला तिला एकत्रित एक्सरसाइज दिला गेल्यामुळे स्पेस आतमधली मेंटेन केली जाते आणि या स्पेस मेंटेन केल्यामुळे फार मोठा पोट असेल तर ते दिसत नाही आतमध्ये थोडस, आता दिसू नये अशातली गोष्ट नाही पण ते राहतं आणि त्याला चांगला व्यायाम तडास दोन्ही हातांची बोट अशी घेऊन वर खेचून करायचा। आता इथे काय होतं, या त्या होता जेव्हा खींच के पकडते आहेत तो रीढ़ की हड्डी को ऊपर खींचा जाता है और पूरा ये जो हमारा छाती का पिंजरा है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां फिर वापस वर्टिकली गर्भाशय को स्पेस मिलती है। ये होने के बाद पैरों के उंगली के ऊपर खड़ा है, बस चलना मिलना नहीं है इसमें। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि अभी नीचे आना चाहिए, नीचे आ हाथ नीचे
हाँ ये प्रकार अततुला पास अर्थ था बेचे ना। अभी लेफ्ट पे थोड़ा झुकना है, इसमें क्या होता है अंदर वाले पूरे सिस्टम को एक साइड से ऊपर खींचा जाता है सेंटर में आके फिर उस तरफ। ये सर बस अभी समांतर आगे हाथ जाएगा जो पीछे हाथ चला जाएगा उसकी उंगलियां लेगी, जितना समय रुकेंगी रुको बाकी सामने आके रुक जाए बस। इस तरह बैठना है, उसी के आधार से ऊपर आ जाना दो चरण। ये प्लेटफॉर्म का सपोर्ट इसलिए लेना है क्योंकि आपका वेट बड़ा है और बच्चा अंदर गिर न जाए, इसके लिए ये हवा कुणाला सोबत क्या पर पढ़ना ना इस डेफिनेट तुम्हें पकड़ ला सकता। जो भी चलेंगे वो दोनों पैरों में हमारे अंतर है ये याद रखो। चलते समय वॉकिंग एक्सरसाइज अकेले करो, पति के साथ नहीं, सहेली के साथ भी नहीं। उसका कारण ये कि जो ब्रीदिंग होता है उस ब्रीदिंग में बातें करना मना है। पति या सहेली रहेगी तो आपकी बातें होगी, चलने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। और चलते समय जो नॉर्मल दो पैरों में डिस्टेंस है उसे थोड़ा बढ़ाओ, दोनों पायों का अंतर थोड़ा सा बढ़ाओ। थोड़ा बढ़ाने के बाद पूरा शरीर का जो सेंट्रल लाइन है वो मेंटेन किया जाता है और चलने में आसानी होती है, गिरने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। स्पेस जरूर चालना नाम की बैलेंसिंग होता है, नंतर स्लो जितना से इतना उतरा चढ़ाता नहीं, जहां पर स्लोप रहेगा इधर है स्टेयर केस से उतर चढ़ो, लिफ्ट से चलेगा लेकिन स्लोप रहेगा तो पैरों की पोजीशन ये रहती है, स्लिप हो गया तो गिर सकते हैं, तो वो ध्यान में रखें। ठीक है, बगैर चप्पल नहीं जाना है ये याद रखो, हाई हील नहीं वापरना है, शूज पहनो सबसे बेस्ट। गिरना किसी भी हालत में नहीं है, आपको कैनवस से शूज लगाते नहीं साथ शूज पहन के चलो,
पाप को भी धीरे धीरे उठाना है धीरे धीरे।
हाँ
जितना
जमुना में तुम्हारा
खड़ा रह सके
जितना समय आप रुक सकती है उतना रुको, बाद में नीचे ले
धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है और हाथ को आगे लाना है, बताओ या फिर ऐसे दूसरा प्रकार से
पैर सीधा रहेंगे, मान मांगे
आता प्रकार तुम्ही दोन प्रकार तीन वेळा करू शकता।